मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता।
ओम शांति। बाबा ने तो कल हम सब बच्चों को होली मुबारक कहा, मैं भी आप सबको आज होली जो है, एक्चुअली आज है होली, तो आज के दिन की होली मुबारक आप सबको देता हूं। और कल यहां पर होली का, जिसको कहते हैं धुलिया का भोग होगा, तो उसके लिए भी एडवांस में मुबारक हो। कल बाबा ने बहुत कुछ बातें कही है, बहुत लंबी मुरली है, 8 पेज की अव्यक्त मुरली है। कल भी बाबा ने बहुत स्पीड में, क्योंकि बाबा को बहुत कुछ कहना था, बताना था, मैं तो टाइमिंग नोट करता हूँ, 7:22 को मेरी घड़ी के मुताबिक कह रहा हूँ, 7:22 को गुलजार दादी स्टेज पर बैठे, 5 मिनट में ही 7:27 को दादी जी ध्यान में चले गए, बाबा के पास गए, और बाबा 7:32 को आ गए मेरी घड़ी के मुताबिक, और बाबा ने दृष्टि दी, हम सबको दृष्टि से पावन किया, और 7:45 को मुरली चलाई। जो मेन ऑपरेटिव पार्ट जो है, जो बाबा ने याद प्यार दिया, उसके पहले का मतलब जो है, 9:02 पर बाबा ने मेन समाप्त किया, 9:10 को बाबा ने याद प्यार दिया। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 मुरलियों से बराबर बाबा कितना भी जो भी बोलना है इतना फास्ट बोल करके 9:02 पर मुरली मेन जो ऑपरेटिव पार्ट है ना, वो समाप्त करते हैं। जैसे कि घड़ी बाबा के कहने के मुताबिक या बाबा घड़ी के मुताबिक चलते होंगे, और फिर 9:55 तक बाबा पार्टियों से मिले, और फिर आप जानते हैं 11 बजे तक, 10:45-11 के बीच में बाबा ने विदाई लिया। हम बच्चों के साथ होली भी खेली, और पहली बार जो है बाबा हम संदर से उठ करके हाथ में पिचकारी लेकर के हम सबके सामने आए, और होली से हम सबको रंगने का पुरुषार्थ किया बाबा ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी तो बाबा संदल पर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे कारोबार करते हैं, पर कल बाबा को हम बच्चों ने अपने प्यार में खींच लिया, और यहाँ आगे तक आकर के बाबा ने सबके ऊपर होली का रंग जो है वो पिचकारी के द्वारा क्या कहे, हम सबको लाभान्वित किया। कहीं कहते हैं कि हमारे ऊपर तो रंग नहीं पड़ा, वो तो स्थूल रंग की बात थी, बाकी बाबा ने तो कल कह दिया परमात्मा का संग का रंग। मैं मुरली के अंदर जो बाबा ने जो 2 सावधानी कहा है ना, वो मैं पहले लेना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। एक तो बाबा ने पहली सावधानी जो बाबा ने कहा कि देरी से आ सकते हैं, सत्यु की आदि से नहीं आ सकेंगे, देरी से आएंगे। बाबा ने याद भी दिलाया कि आप सबका वायदा है बाप के साथ जाना और ब्रह्मा बाबा के साथ सत्युग की शुरुआत से आना। पिछली मुरली में भी बाबा ने यही सावधानी कही है, और कल की मुरली में भी यही कहा कि देरी से आएंगे। तो पिछली मुरली में तो साफ कहा 2-4 जन्म के बाद देरी से आए, ऐसा भी हो सकता है। हमारे बहन भाई जो है थोड़ा हिसाब नहीं लगाते हैं। मैंने एक भाई को पूछा कि 4 जन्म देरी से आए, तो मैं 4 ही जन्म देरी से आएंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने कहा भाई साहब आप 4 जन्म देरी से आने का अर्थ समझते हो, 4 मानना 4, 84 बर्थ में तो कम हो जाएंगे 4, तो 80 जन्म तो होंगे ना यहाँ, ऐसा उसने मुझे कहा। मैंने कहा भाई साहब ये गलत बात है, आप समय की मर्यादा को भी गिनती करिए, सतयुग में हम सबके कितने जन्म होंगे, 1250 वर्ष में 8 जन्म होंगे, तो जो 4 जन्म कम होंगे वो कहां के कम होंगे, कलयुग के चार जन्म नहीं, कलयुग के चार जन्म काम हो तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर तो सत्युग के चार जन्म कम पड़े, एक जन्म 150 वर्ष का और चार जन्म के हिसाब से 600 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात आधा सत्युग बीत जाएगा। मैंने कहा कि आप चार जन्म जैसे ऐसा लगता है, वो हमारे एक मित्र जो है ना वो ऐसा ही कहता है, मुसलमान है, वो कहता है कि आप हिंदू लोग तो आज स्नान करेंगे ना फिर कल स्नान करेंगे और हम तो जुम्मे जुम्मे करते हैं। ऐसा बोलता है कि जैसे कि जुम्मे जुम्मे करते हैं, माना दिन में 10 बार करता होगा, और हम आज करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कल करेंगे, जैसे कि 2 दिन के बीच में 2 साल का गैप होगा, ऐसे ही बात करते हैं। ऐसे ही बाबा ने बहुत हल्के नमूने में कह दिया कि दो जन्म माना 1/4 सत्युग चला जाएगा, 8 जन्म में से 2 जन्म चले गए माना 1/4, 3 जन्म चले गए माना 37% सत्युग चला जाएगा, और 4 जन्म चला गया माना 50% सत्युग चला जाएगा। मैं अपने तरफ से एक बात नहीं कहना चाहता हूं, परंतु हमारे एक भाई ने बहुत कड़ी बात कही थी, परंतु मेरे को वो भाई की बात बहुत अच्छी लगी। उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोग तो देरी से आए, अभी संगम युग का कितना 60-70 साल बीत गया, कभी अभी तो कल भी कई नए पहले आए थे, पिछली मुरली के समय पर भी नए लोग आते हैं, माना संगम युग के 70-72 वर्ष बीत जाने के बाद आते हैं, तो कितना समय चला गया संगम का, अब तो समाप्ति के नगारे बज रहे हैं। तो उस भाई ने बहुत सुंदर एक कठिन बात कही थी कि संगम युग में जो देरी से आए हैं, मैं बोलूं उनकी बात आप सबको बुरा लगेगा, परंतु वो भाई ने जो बोला इसलिए मैं कह रहा हूं, उसने यही कहा कि संगम युग में भी हम देरी से आए ये भी एक प्रकार की सजा है, क्यों नहीं हम संगम के आदि में आए, देरी से आए इसलिए एक प्रकार की सजा है, इसलिए हमें पुरुषार्थ में तीव्रता से करना पड़ेगा ताकि हम सत्युग में भी देरी से ना आए। इसलिए सत्युग के में जल्दी से आना, शुरू से आने के लिए पुरुषार्थ के लिए उसने ये इसी दृष्टिकोण से ही कहा कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पिछले कई मुरलियों में बाबा ने यही कहा है कि 2 लेट का बोर्ड नहीं लग गया उसके पहले आ जाओ। बाबा 2 लेट की बातें हमने इसके किताब छपाई हुई है, आप लिटरेचर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। 2 लेट की बात 1971 से बाबा कहते आए हुए, हमारी उस किताब में हमारे गांधीनगर के भाई बहनों ने, बाबा ने इतने 71 से माना 69 से पहली बार 71 में 2 लेट शब्द कहा हुआ है। कब कब बाबा ने अव्यक्त मुरली के अंदर 2 लेट कहा हुआ है वो सारी किताब छपी हुई है, इनसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाबा जो है वो लेट आने वाले को याद दिला रहे हैं। उसके पहले के मुरली में भी बाबा ने जो कहा है कि अभी पुरुषार्थ का समय बीत गया, जब बाबा ने कहा ना पुरुषार्थ का समय बीत गया तो मुझे भी मन में संकल्प चला अभी क्या कौन सा समय है, तो बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। बाबा ने यह भी कहा कि अभी चलने का समय खत्म हो गया, अब दौड़ने गया उड़ती कला का पुरुषार्थ की ही जरूरत है। तो मैंने हमारे स्पार्क की मीटिंग में भी कहा कि पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ में क्या फर्क है, तीव्र पुरुषार्थ की गति क्या हो सकती है और उसमें क्या प्रगति करनी चाहिए जिसके कारण हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति के पुरुषार्थ में उसका परिवर्तन करें, या हमारा चलने की जो स्पीड है उस चलने की स्पीड को दौड़ने के या उड़ती कला के अंदर कैसे पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तित करें। ये बहुत सुंदर बातें बाबा बताते रहे, समय की मर्यादा कल भी बाबा ने बताई, और दूसरी जो सावधानी जो है वो तो बहुत कड़ी बात कह दी है बाबा ने, हमारे आज तक बाबा ने ये बात नहीं कही है आज तक। मैं तो इतना समय से मुरली को अभ्यास कर रहा हूं, कल बाबा ने जो ये पहली बार ये सावधानी उच्चारण किया है, मैं पढूं? आप सबने सुना तो है। फिर भी बाबा ने कहा लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहां कहां लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। अब बाबा ने कठिन शब्द कहा है, हुआ है, बाप दादा को सब पता है लेकिन नाम नहीं लेते। बाप दादा को सब पता है लेकिन नाम नहीं लेते। कभी वह भी समय आएगा, कभी वह भी समय आएगा जब बाबा नाम दे देंगे कि ये फलाना देखो, ये फलाना भाई, नाम सहित बाबा कहेंगे। आज तक तो क्या है बाबा, हमारी गलतियों को प्रसिद्ध नहीं करते। तो बाबा ने कल पहली बार ओपनली कह दिया मुरली के अंदर कि कभी वह भी समय आएगा। आप विचार करो, हर एक अपने आप से पूछे, हमारी गलती के कारण बाबा हमारा नाम प्रसिद्ध करे वो आप सबको पसंद है? हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन से पूछे कि बाबा संदल पर स्टेज पर बैठ करके कह दे कि ये फलाना भाई या फलानी बहन ने ऐसा किया है और ऐसा हमारा नाम प्रसिद्ध करे। हाँ, अच्छी बात में प्रसिद्ध करे वो तो अच्छी बात है, पर तो गलतियों के रूप में, सजा के रूप में हमारा नाम प्रसिद्ध करे, ये मंजूर है? कोई है यहाँ जिसको ऐसा बाबा उसका नाम प्रसिद्ध करे वो मंजूर है? कोई भी है ऐसा? कल बाबा ने पहली बार ओपनली कह दिया कि अभी तक तो बाबा नाम नहीं लेते हैं, कभी ये भी समय आ जाएगा, मतलब आ जाएगा माना आएगा, ये मत समझो कि बाबा नहीं करेंगे। बाबा को जो कहना होता है और जो करना होता है उसके पहले से ही सूचना कहो, सावधानी कहो, हम बच्चों को दे देते हैं। फिर भी बाबा ने कह दिया कल, हाँ, बाप दादा ने देखा है कि मेजोरिटी संघ देश में बहुत आते हैं और उनकी खुल की भी दिल खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संघ का रंग, बाप का संघ का रंग कम लगता है इसलिए वह रंग लग जाता है। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संघ दोष में नहीं आओ। संघ दोष में आ जाते हो, टेम्पटेशन है, संघ दोष में नहीं आओ, हत्या प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि ये कहता तो मेरा बाबा है मगर करता क्या है। इसलिए आज होली के दिन ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो, फिर भी टू लेट का बोर्ड से आगे बदल जाओ। बाप दादा मदद करेंगे लेकिन किसको मदद करेंगे? सच्चे दिल को ही मदद करेंगे, क्योंकि साफ दिल मुराद हासिल, करके देखो दिल से, सच्चे दिल और मुराद हासिल नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। आप समझे कितनी स्पष्ट रूप में सावधानी, मैं हमेशा ही मानता रहता हूं, आप सब मानते हो या नहीं मानते हो मुझे मालूम नहीं है, तो मेरा मानना है कि बाबा आस्ते 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 आस्ते, जो बाबा का चौथा स्वरूप है ना, तीन स्वरूप तो आप जानते हैं, परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, और चौथा स्वरूप क्या है? धर्मराज। तो आस्ते 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 बाबा बड़ी युक्ति से, लॉजिकल और युक्ति से आस्ते 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 अपना धर्मराज का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। आप सब मानते हो? आप सब मानते हो ना, बाबा आस्ते आस्ते अपना धर्मराज का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। तो इसलिए हम बाबा धर्मराज बन जाए पूर्ण रूप से, उसके पहले, क्योंकि अभी दो मुरली के पहले की मुरली में कह दिया है मुझे साथ में तो ले जाने का है, मुझे सभी बच्चों को साथ में तो ले जाने का है, चाहे प्यार से चाहे मार से, याद है? वो भी बाबा ने धर्मराज के रूप में बोल दिया, मुझे साथ में तो सबको ले जाने का है, चाहे प्यार से चाहे मार से। मार से मना कैसे? धर्मराज की पुरी में ही मार मिलने वाला है, और तो कहां मिलेगा ही नहीं, मिलेगा और कहां भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए, परंतु कहीं ऐसे महारथी होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा के पास मैं धर्मराजपुरी में जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा भाई, आपको धर्मराजपुरी में क्यों जाने की इच्छा है? कहा दो बातों के कारण मुझे धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा है। मैंने कहा बताओ। कहा कि इसी बात ने एक ध्यान पूरी जो है, एक पूरी पूरी कंप्लीट पूरी है, धर्मराज की सजाएं कैसे होती है वो धर्मराज पूरी देखने को तो मिल जाएगा। और दूसरा कहा कि ब्रह्मा बाबा को तो हमने साकार रूप में देखा नहीं, तो धर्मराज पूरी में तो ब्रह्मा बाबा बैठा होगा, मम्मा बैठी हुई होंगी, और भी हमारे जो भी बड़े पहले गए हुए वो बैठे हुए होंगे, उनको वहां देखने को तो मिल जाएगा। तो मैंने उस भाई को कहा, भाई साहब आपकी आशा तो बहुत अच्छी है, परंतु आप वहां के जज बन करके आओ ना, ट्राइब्यूनल जो बाबा सजा कर देने के लिए, कि बाबा सबकी तो अकेला सजा नहीं देगा, सबकी बातें नहीं सुनेगा, आप अलग अलग बैठेंगे, तो आप ट्राइब्यूनल के जज बन करके आओ ना, उसमें क्या नुकसान है? तो वहां आपके नाम का बाबा पुकारे, कोई पुकारे कि अभी इनको पेश करो, और फिर हमारी गलतियां जो भी है तेरे जन्मों की वो सब बताया जाए, ये कैसे होगा? तो ऐसे भी कहीं है। हाँ, मैंने तब जब उस भाई ने कहा ना कि धर्मराजपुरी में जाने में मेरे को तो कोई डर नहीं है, मैं जाऊंगा, मैंने कहा भाई ठीक है, आप में से कोई की इच्छा है, जिनकी इच्छा हो कि हम धर्मराजपुरी में जरूर जाएंगे? हाँ, कोई ऐसे है जो जिनकी धर्मराजपुरी में, जैसे वो भाई ने बताया ना, मुझे तो धर्मराजपुरी में जाने की बहुत इच्छा है। तो सोच लीजिए बाबा आहिस्ते आहिस्ते धर्मराजपुरी का, या तो धर्मराज के रूप का अपना कारोबार करते हैं। एक अव्यक्त और मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों को जो कहता हूं वो नहीं करते, और जो नहीं कहा है वो कर लेते हैं। जिनों को मालूम होगा बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है कि मैं सभी बच्चों को कहता हूं आप मास्टर प्यार के सागर बनो, मास्टर आनंद के सागर बनो, मास्टर स्नेह के सागर बनो, मास्टर शक्ति के सागर बनो, बच्चे वो नहीं बनते। और तो मैंने कभी नहीं कहा है कि सभी बच्चे हम मास्टर धर्मराज बने, और तो बाबा बच्चों को मास्टर धर्मराज बनना बहुत अच्छा लगता है, और औरों के लिए जजमेंट पास कर देते, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा है कि आप मास्टर धर्मराज बनकर के औरों को देखो, औरों की चेकिंग करो। कल भी बाबा ने दो बार कहा अपनी चेकिंग करो, अपनी चेकिंग के लिए कहा हुआ है। बाबा ने आज तक कभी नहीं कहा है कि औरों की चेकिंग करो, पर तो हमको बहुत अच्छा लगता है औरों की चेकिंग करने के लिए। न सिर्फ औरों की चेकिंग करते हैं, तो औरों के बारे में जजमेंट भी पास कर देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैंने कभी किसी भी बच्चे को मास्टर धर्मराज बनने के लिए नहीं कहा है, परंतु बच्चे मास्टर धर्मराज बन जाते हैं। माना जो मैं कहता हूं वो नहीं करते, जो नहीं कहा है वो कर लेते, इसका ही नाम बच्चे हैं। तो ये कल की मुरली की जो सावधानी की बात जो है, मेरी फर्ज थी कि मैं ये सावधानी आप सबके ध्यान पर पहले खींचाऊं, ताकि आप सबको याद रहे कि बाबा आस्ते आस्ते अपना स्वरूप जो है परम पिता के रूप में, अभी मैंने भी कल आर्टिकल लिखा हुआ है कि परमात्मा का परम पिता के रूप का सबको मालूम है, परंतु परम शिक्षक के रूप में जो बाबा ने कर्तव्य किया है ना, वो इतने प्रसिद्ध हमारे दैवी परिवार में नहीं हुए। बाबा ने परम शिक्षक के रूप में आहिस्ते आहिस्ते लॉजिकली एक के बाद एक के बाद एक के बाद बातें बता करके हम सब की जो पुरानी बातें जो थी, भक्ति मार्ग की जो बातें थी, उन बातों से हमारी श्रद्धा टूटे नहीं है, अंधे श्रद्धा में भी ना ले जा करके पुरानी बातों के ऊपर की हमारी श्रद्धा है उसमें परिवर्तन करा करके नई बातों के ऊपर बाबा ने श्रद्धा बिठाई है। This is really a wonderful act of Sri Baba as Param Shikshak. Param Shikshak ke roop mein purani baaton ka netar, aap jante ho purani baaton kaise thi? Gita ka Bhagwan kaun? Paramatma Sarvyapi. Humne khud ne pehli baar jab suna Shiva aur Shankar mein bhed hai, to humne mana kaise ye hoga? ऐसे ऐसे कितनी बातों में बाबा ने परिवर्तन किया, आस्ते 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 परिवर्तन करते गए कराते गए। मेरे को मुझे मालूम है हमारे गांव में बॉम्बे में एक सेंटर में एक बहन आती थी, ब्रह्मा बाबा के सामने ही उसने कहा कि बाबा मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि गीता का भगवान शिव है, मैं तो हमेशा मानूंगी गीता का भगवान कृष्ण है। तो बाबा ने कहा अच्छा है बच्ची, तुम्हारी जो भी मान्यता है तुम क्लास में आते रहना, बाबा के ज्ञान बाबा की मुरली सुनते रहना। फिर क्या हुआ, 3-4 साल के बाद जो है ना मैं मुरली सुना रहा था, तब बाबा ने उसमें मुरली में के बीच में कहा कि बच्चों को मालूम है कि गीता का भगवान शिव है कृष्ण नहीं है। तो मैंने हमारे गांधी के क्लास वालों का हाथ खड़ा करने के लिए पूछा कि आप हाथ खड़ा करो गीता का भगवान शिव है वो मानने वाले कौन कौन है, तो सबने हाथ उठाया, उसमें वो बहन ने भी हाथ उठाया जिसने बाबा ब्रह्मा बाबा को कहा था मैं मर जाऊंगी परंतु गीता का भगवान शिव है वो कभी नहीं मानूंगी, मैं तो यही मानूंगी गीता का भगवान कृष्ण है। देखिए इतनी अटूट श्रद्धा गीता के भगवान कृष्ण के रूप में उसकी थी। और 4 साल के बाद जब मैं एक क्लास कर रहा था तो मैंने उनसे क्लास से पूछा, उसमें उसने भी हाथ खड़ा कर दिया कि गीता का भगवान शिव है। तो मैंने उस बहन को पूछा, अभी वो 1 माह पहले वो बहन ने अमेरिका में शरीर छोड़ा, मैंने उस बहन को पूछा कि आपने तो बाबा को कहा था कि मैं मर जाऊंगी परंतु गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वो नहीं मानूंगी, मैं मानूंगी, और आज आप 4 साल के अंदर ही कहते अभी तो आप मरे भी नहीं हो, जीते जी आपने मान लिया कि गीता का भगवान शिव है, तो आप में ये कब परिवर्तन आया? तो बहन सोचती रही, फिर वो बहन ने कहा मुझे मालूम नहीं कि मेरे में ये अनकॉन्शियसली परिवर्तन कैसे हुआ। हम सब के अंदर बाबा ने परम शिक्षक के रूप में ऐसा सुंदर अनकॉन्शियसली हमारी पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन किया है कि उसका धक्का हमको नहीं लगा है। ट्रेन की पटरी में ट्रेन जो जाती है ना वो भी पटरी चेंज करती है तो ठकाक कर से आवाज होता है, ऐसा हमारे दिल में कोई भी इस प्रकार का ठका ऐसा भी नहीं हुआ। और बाबा ने बड़ी युक्ति से परम शिक्षक के रूप में आस्ते 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 सब बातें प्रस्तुत करते करते आज तक हमको इस भूमिका के ऊपर लेके आए। इसलिए मैंने लिखा भी है कि शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का परम पिता के रूप का इतिहास सबको मालूम है, परंतु परम शिक्षक के रूप का किस प्रकार से आस्ते आस्ते ज्ञान की ये बात नहीं आई, ज्ञान की ये बात नहीं आई, कैसे कैसे परिवर्तन होता रहा हमारी मान्यताओं में विचारधाराओं में, और कितना सुंदर वो परिवर्तन किया कि हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि हमारी पुरानी मान्यता कहाँ चलेगी, कैसे सूर्य की रोशनी होती है और अंधकार कैसे दूर हो जाता है, इस प्रकार से ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से हमारी पुरानी अंधकार की माया की जो बातें जो है पुरानी धर्मों की शास्त्रों की मान्यताएं जो है ना वो चली गई। बहुत बहुत सुंदर है दृष्टिकोण है। और इसलिए परमात्मा का मैंने लिखा भी है उसमें कि परम शिक्षक के रूप के कर्तव्य की कहा आदि देव के रूप में, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आदि देव की जो किताब छपी हुई उसमें परम पिता के रूप का कर्तव्य का ज्ञान है, परंतु परम शिक्षक के रूप में यह स्वरूप नहीं है। क्योंकि शुरुआत की बातें थी, शुरुआत में बाबा को पुरानी बातों से श्रद्धा नई बातों में लाना था, तो कितनी सुंदर दृष्टिकोण से लॉजिकल ये बातें कही है। मैंने उसमें एक मिसाल भी दिया हुआ है आर्टिकल में कि बॉम्बे के अंदर एक विद्वान वक्ता थे, उस विद्वान वक्ता ने महाभारत के पात्रों के ऊपर प्रवचन किया था, तब उसने पहले दिन अनाउंस किया था कि मैं महाभारत के पात्रों को सच्चाई के आधार पर उनके बारे में बताऊंगा, सच्चाई के बारे में सच्चा इतिहास बताऊंगा। और जब भीष्म पितामह और द्रोण के बारे में उनका कैरेक्टर का कैरेक्टर के लिए प्रस्तुति किया, तब उसने कहा कि द्रौपदी वस्त्रहरण जब हो रहा था तब राज्य सत्ता के दास बनकर के भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जो है वो आंख बंद करके बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोला दुर्योधन को या कर्ण को। इस प्रकार से ऐसे ऐसे समाज के बड़े राज्य सत्ता के दास बन गए थे, ऐसा मतलब उन्होंने महाभारत के दो पात्रों के बारे में कहा। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उनके प्रवचन के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि आपने तो पहले दिन कहा था कि मैं जो भी है सत्य इतिहास रखूंगा, तो आज आपने झूठे इतिहास के आधार पर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के जीवन को उनका कलंकित रूप क्यों बताया? क्योंकि आप जानते हैं, हमने कहा कि हम सब जानते हैं कि द्रौपदी वस्त्रहरण महाभारत में हुआ ही नहीं है। द्रौपदी वस्त्रहरण महाभारत में हुआ ही नहीं है। आठवीं सदी में भट्ट नारायण करके एक नाट्य लेखक जो नाट्यकार जो था उसने वेणी संवारम करके नाटक लिखा और उस वेणी संवारम नाटक के अंदर पहली बार द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग उसने नैरेट किया है और उसकी प्रस्तावना प्रीफेस में लिखा है। मैं जानता हूं कि इतिहास में जो बातें नहीं बनी है वो मैंने बताई हुई है, इसलिए उसने लिखा है कि इतिहासकार मुझे माफ कर दे, परंतु लोगों के अंदर भारत की ये जो आदि ग्रंथ जो है उसकी सब फिर से पढ़ना शुरू कर, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। तो मैंने उस विद्वान वक्ता को कहा कि आज आपने जो प्रसंग बनाए नहीं है महाभारत में और आठवीं सदी में वो प्रक्षिप्त है, उसके आधार पर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को क्यों ऐसा बदनाम किया? तो उसने कहा कि लोगों की जो जिस बात के ऊपर प्रचलित श्रद्धा होती है उसको तोड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैं नई बातों पर श्रद्धा नहीं बैठा सकता हूं और पुरानी टूट गई तो श्रद्धा शून्य समाज हो जाएगा, ऐसा 14 सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। मार्टिन ल्यूथर और उनके साथी जो है जो जर्मनी के थे, इन्होंने रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की जो प्रणाली थी उसके ऊपर बहुत ही प्रहार किया और उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की क्रिश्चियनिटी की न्यू ब्रांच के रूप में प्रस्तुत किया। नई ब्रांच के ऊपर वो श्रद्धा नहीं बिठा सके, इसके कारण श्रद्धा शून्य समाज हो गया। इन्होंने कहा मार्टिन ल्यूथर ने जो गलती किया ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। तब मैंने उस विद्वान वक्ता को कहा कि ब्रह्मा कुमारी में तो परमात्मा जो भी अंधश्रद्धा की बातें हैं जो हुई नहीं है ऐसी बातें भी बता करके लोगों की श्रद्धा पुरानी बातों से निकाल करके नई बातों में ट्रांसफर करते हैं। तब उस विद्वान वक्ता ने मुझे कहा मैं जानता हूं, मैंने ब्रह्मा कुमारी के साथ उनका इतिहास और मैं इन सब बातें जानता हूं, मैं जानता हूं कि परमात्मा में ही वो शक्ति है जो पुरानी अंधश्रद्धा की बातों से श्रद्धा निकाल करके नई बातों में श्रद्धा बिठा सकता है। मनुष्य में वो ताकत ही नहीं है कि पुरानी अंधश्रद्धा की बातों को निकाल दे। तो बाबा ने ये करके दिखाया है कि परमात्मा परम शिक्षक के रूप में कि जो परमात्मा ने आकर की नई नई बातें सुनाई, कितनी नई बातें हैं आप निश्चित निकालो तो 1000 से भी ज्यादा बातें निकल आएंगी जो बिल्कुल नई बात थी। हम कलयुग के बारे में यही समझते थे कलयुग अब तो बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, कल की अवतार होगा, दशा अवतार के बारे में हमको बताया गया है, राम कृष्ण कब हो गए वो सारी बातें बाबा ने बताई है, कितनी बातें नई बताई हुए और ये नई बातें नहीं तो धक्का लगता है। मेरा एक मित्र है वो पहली बार क्लास में गया, सेंटर पे गया 7 दिन का कोर्स के लिए, तो पहली बार जो है ना जब बहन ने उनसे सवाल पूछा कि आपको कितने बाप है, तो उसने कहा कि बहन ने जब सवाल मुझे पूछा ना आपको कितने बाप है तो मुझे लगा कि मैं एक बहन को एक चमाट लगा दूं, कितने बाप होते हैं यह पूछने का सवाल है, सबको एक ही बाप होता है। माँ के बारे में हो सकता है, एक सगी माँ होती है, सौतेली माँ होती है, ऐसे माँ के बारे में होता है, बाप तो एक ही होता है। परंतु बहन ने उसने उसको लगा कि कुछ इस सवाल में कुछ है, इसलिए वो सुनता रहा। फिर वो बहन ने बताया कि आपका लौकिक पिता है, जिसरा दूसरा है, जो आप मंदिरों में जाते हो तो हमें माता जब पिता तुम्हें कहते हो, तो परमात्मा भी आपका पिता है, तो पिता का उसका ज्ञान नहीं, ऐसा करके बताया। तब उसको लगा कि देखो मैंने शांति से ये बात सुनी तो कितना अच्छा हुआ। तो ऐसे मतलब परम शिक्षक के रूप में परमात्मा के जो दिव्य कर्तव्य है ना, उसको दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए और उसी दृष्टिकोण से यज्ञ का इतिहास फिर से लिखना चाहिए। ये मुंह है, ये बात के ऊपर विचारधारा चल रही है। अव्यक्त बाप दादा से भी ये पूछा गया है और अव्यक्त बाबा ने भी इसके बारे में कहा है कि ऐसा मतलब सोचो ऐसा इतिहास कैसे कैसे समय प्रति समय बाबा ने ज्ञान की नई नई बातों को इंट्रोड्यूस कर करके पुरानी बातों से श्रद्धा ट्रांसफर नई बातों के ऊपर किया है। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने दिव्य कर्तव्य किया है, बहुत सुंदर। आपको जब उसके ऊपर सोचेंगे, आपका अपने जीवन में देखिए पुरानी, मैं खुद ही अपना बताऊं, मैंने जब ब्रह्मा बाबा से सुना परमात्मा के ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, तो मैंने कहा बाबा मैं ऐसे परमात्मा को नहीं मानता हूं जो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, मैं तो शास्त्रों के उस परमात्मा में मानता हूं जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। इसलिए मैंने कहा बाबा आपको क्या मालूम, परमात्मा तो इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, जो चाहे वो कर सकता है, जो ना चाहे वो नहीं कर सकता है, अर्थात ड्रामा से ऊपर है, ड्रामा के बंधन से मुक्त है। ब्रह्मा बाबा ने मुझे आस्ते से इतना प्यार से कहा, बच्चे ऐसा कोई भगवान ही नहीं है तो मैं इसके बारे में कैसे आपको बताऊं, ऐसा कोई परमात्मा ही नहीं है जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हो। शास्त्रों में हम मानते रहे, आज वही हमारी श्रद्धा जो है आस्ते आस्ते बाबा ने परिवर्तित किया। महाभारत के बारे में लोकमान्य तिलक जो है, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि पहले जय नाम का ग्रंथ हुआ, पीछे विजय नाम का ग्रंथ हुआ, पीछे भारत नाम का ग्रंथ हुआ, पीछे बाद में महाभारत में ग्रंथ हुआ, और उसके अंदर बातें प्रक्षिप्त होती होती गई होती गई, और 8वीं सदी के बाद गीता भी जो है श्रीमद् भगवद गीता वो महाभारत में प्रक्षिप्त हुई है, ऐसा इन्होंने और सातवलकर जी ने लिखा हुआ है। आपको मालूम है महाभारत में 14 प्रकार की गीताएं हैं, 14 गीताएं हैं, सिर्फ एक महाभारत में भगवद गीता नहीं है, 14 प्रकार की गीताएं, और सभी एक के बाद एक ने हर एक ने अपने अपने विचारधारा के आधार पर उसमें प्रक्षिप्त करते गए। बहुत बड़ा भारी धर्मों का इतिहास है और ये इतिहास, और बाबा ने इन सब के ऊपर से हमारी श्रद्धा निकाल करके ईश्वरीय ज्ञान और योग के ऊपर श्रद्धा बिठाई। कल भी बाबा ने बताया बहुत, हमारी जो स्पार्क विंग का और साइंस इंजीनियर विंग के लिए कहा कि पहले उनको प्राप्ति की अनुभूति कराओ, प्राप्ति का ज्ञान दो, और उसके बाद वो आगे चलता जाएगा, उसके बाद उसको आगे बढ़ा दे जाओ। तो इस प्रकार से कल बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हुई है। बाबा ने होली के बारे में शुरुआत भी किया है, बाबा पहला महावाक्य जो उच्चारण करते हैं उसके अंदर जो बात कहते हैं उनसे लग जाता है कि सारा मुरली का कॉन्सेंट्रेशन उस बात के ऊपर होगा, जिसमें बाबा ने कहा आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हुए हैं। इसमें सब कुछ आ गया, इस मुरली में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, वो आ गया कि होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। एक ही होली शब्द है और तीन अलग अलग स्वरूप में और संबंधों में बाबा ने यूज किया है। बाप ने अपने को भी होलीएस्ट बाप करके उसमें भी होली शब्द है, फिर होली बच्चों को, हम बच्चे भी होली है उसके से, और होली मनाने के आए, एक ही इसके है बाबा की। बाबा साहित्य का स्वामी है, ही इज ए मास्टर इन लिटरेचर ऑल्सो, और ये स्पोकन लिटरेचर है। मैं लिखता हुआ मुझे मालूम है स्पोकन लिटरेचर बनाना बहुत कठिन है, लिखा हुआ साहित्य बनाना सोच सोच करके लिख करके रखना वो आसान है, परंतु स्पोकन लिटरेचर के रूप में और उसमें इतना सुंदर एलिटरेशन मेटाफर्स इस सब प्रकार के लाना वो बहुत कठिन बात है, परंतु बाबा साहित्य का स्वामी है और इसलिए एक ही वाक्य में तीन बार होली शब्द अलग अलग स्वरूप में यूज किया। जब बाबा ने तीन बार शब्द बोला तो मैंने कहा बाबा आज आपने आप साहित्य का स्वामी हैं, ये बात भी सिद्ध करके बताई कि आप शब्दों के साथ खेल सकते हो। शब्दों के साथ खेल करके साहित्य बनाना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। वो तो जो लिखते होंगे ना उनको ये मालूम होगा कि शब्दों के साथ कैसे हम खेल सकते हैं। बाबा ने कहा कि सभी होली बच्चे हैं, सभी बच्चे होली बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा आपके ऊपर कौन सा रंग लग गया है और सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है। बाबा ने परीक्षा नहीं पूछी, नहीं तो सवाल पूछ सकते थे कि आपको कौन सा रंग लग सकता है। मतलब बाबा ने ये सवाल जरूर पूछा कि आप सब होली बन गए हो। बाबा ने बस जवाब दे दिया सबसे बड़ा थे बड़े से बड़ा रंग है परमात्मा के संग का रंग। जब बाबा ने ये परमात्मा के संग का रंग का कहा ना तब हमको मम्मा याद आ गई। बॉम्बे के अंदर होली का त्योहार का बड़ा फंक्शन मनाने का था, मम्मा हमारे घर में थी, मम्मा मातेश्वरी जी हमारे घर में 18 मास रही थी। मम्मा का उसी दिन सुबह गले का टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था। आप समझते हैं टॉन्सिल कईयों का हुआ होगा, टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ था। मम्मा को दो दिन बोलना नहीं था, परंतु दूसरे दिन होली का महोत्सव था और उसमें उषा को गीत गाना था। उसमें मम्मा जो है ना कराची में और हैदराबाद में जो गीत गाती थी वो उषा को गीत गाना था। हमारे पास गीत के शब्द थे परंतु गीत का ट्यून नहीं मालूम था, उषा को और हमको मालूम नहीं था। तो मम्मा को कहा कि मम्मा आपको बताना होगा, तो जमुना बहन ने तो मना कर दिया। मम्मा की जो भ्रमणी थी कि मम्मा नहीं गा सकते नहीं बताएंगे, मम्मा ने कहा नहीं मैं बताऊंगी, मैं दो लाइन गा करके बताऊंगी। और मम्मा ने वो दो शब्द दो लाइन गा के बताई कि चढ़ो रे मोहे आज लोकी के रंग। बहुत सुंदर वो गीत है, महात्मा गांधी के जमाने में मथुराबेन खरे ने वो गीत गाया है, आश्रम भजनावली में भी वो गीत है। जो महात्मा गांधी के परिचय में आए होंगे उनको मालूम होगा आश्रम भजनावली में मम्मा ने वो गीत वहां से लेकर के ब्रह्मा बाबा के सामने अर्थात कराची में और हैदराबाद में वो गाया था, चढ़ोरी मोहे आज लौकिक रंग। बहुत सुंदर वो उसका मम्मा ने ट्यून बिठाया, वो मथुराबेन खरे ने भी वो नहीं गाया इतना सुंदर तरीके से मम्मा। और इसलिए मम्मा का गायन है सरस्वती बेंजो के साथ गीत गाती थी। मम्मा को मम्मा अगर गीत गाने में भी दुनिया गीत गाने की दुनिया में जाती ना तो बहुत सुंदर श्रेष्ठ नाम उसका होता, इतना सुंदर उनका राग था गाने का और तर्ज बिठाने का मम्मा के पास अभ्यास था। तो ये बाबा ने जबकि ये कहा तब मुझे मम्मा याद आया कि मम्मा ने कैसे होली के लिए गीत गाया था, चढ़ोरी मोहे आज लौकिक रंग। मतलब बहुत सुंदर वो गीत है, कभी समय मिला तो वो उषा जी को कहेंगे उषा बहन को कहेंगे वो गीत गा के सुना रहे। और बाबा ने कल क्या कहा कि आप सबको आत्मा का रंग अपवित्रता जो है उसे पवित्रता बन गया है, आप सब ने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना दिया है, कंपनी बना लिया है अर्थात कंबाइंड हो गए हो। ये हमारा वास्तविक स्वरूप बन गया कि हम कंबाइंड बन गए हैं। और फिर क्या करती है माया आकर के क्या करती है, हमारे पुराने संस्कारों को इमर्ज कर करके बाबा ने कहा कि यह कंपनी जो है बाबा आपको अकेला कर देती है। और बाबा ने पुराने संस्कारों में दो बातें कही हैं, तीन चार बार कल बाबा ने मुरली में इस बात को रिपीट किया, पुराने संस्कार अलबेलापन और आलस्य यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड होता है। बाबा ने यह भी कहा कि ये आलस्य क्या है और अलबेलापन क्या है उसके ऊपर क्लास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी रतनमयी दादी बाबा की इस बात को स्वीकार करके यहाँ पर स्टेज पर अलबेलापन और आलस्य के बारे में क्लास कराएंगे। और फिर बाबा ने बाबा का संग का रंग के साथ और कौन से रंग लगते हैं ना, वो भी बाबा ने कहा हाँ कि आपके ऊपर ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग और गुणों का रंग, वह भी बाप आपके ऊपर लगाता रहा है। ये कैसे लगा रहे हैं बाबा ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, तो हमारे ऊपर ये रंग लगते गए। और इसलिए बाबा ने हाथ भी उठवाया कि जिनों के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ हो हाथ खड़ा करो। और बाबा ने ये भी बताया कि ये रंग जो है वो अविनाशी रंग है, उसके ऊपर और कोई रंग नहीं लग सकता है। और इसलिए बाबा ने कहा हाँ कि ये क्यों रंग लगता है कि आप पवित्र आत्माएं पवित्र बनते हो और आप ऐसे होली बनते हो, पवित्र बनते हो, जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बनते हैं। दुनिया के अंदर और कोई ऐसा रंग नहीं है, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है जिसके द्वारा शरीर भी पवित्र हो, क्योंकि कलयुग में सबके शरीर अपवित्रता के आधार पर ही जन्म लेता है, जन्म मिलता है। तो कल बाबा ने जो कहा हम बच्चों के लिए हाँ कि आपको ऐसा होली बना देते हो जो आपके जड़ चित्र कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो। जब बाबा ने कहा ना कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हो, तब हमको याद आया कि हम 74 में लुसाका गए हुए थे। लुसाका से 300 किलोमीटर दूर लिविंगस्टन करके शहर था, वहां पर भजन सम्मेलन था। तो एक भाई के घर में हम लोग रात को रहे हुए थे, तो सुबह उठने उठ करके भक्ति शुरू की, हम सबको भी उठाया, कहा चलो चलो आओ आओ मैं आरती गाता हूं, मैं आरती गाता हूं। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखे तो सही ये कैसे आरती गाता है। तो उसने अपना जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, आप सबने देखा है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र, ये अपना लक्ष्मी नारायण का चित्र वहां पर लगा हुआ था और उसको उसकी वो आरती करता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ब्रह्मा कुमारी इसका लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तुमने कहां से लाया? कहा मैं माउंट आबू में गया था और माउंट आबू में गया तो वहां आपका ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा और मैं इस चित्र के आधार पर लक्ष्मी नारायण के प्रेम में पड़ गया, लक्ष्मी नारायण के चित्र, और मैंने वो खरीद कर लिया। और मैंने देखा मेरे पास भी पुराना लक्ष्मी नारायण का चित्र था परंतु वो इतना पावरफुल नहीं था, आपका ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत पावरफुल है। मैंने कहा अच्छा वो क्या करता है? कहा ये चित्र के आगे जो भी आप रखो भावना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आपका ये चित्र जो है ना मेरी सभी भावनाएं पूर्ण करता है। आप समझा? आपका ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो जिस चित्र की हमें इतने पड़ी नहीं है, इतने प्रदर्शनी में इतने हजारों चित्र है, उसमें ये लक्ष्मी नारायण के भी होता है। तो वो भाई ने बताया कि आपका ये लक्ष्मी नारायण के चित्र हमारी सभी मनोकामनाएं भावनाएं आदि पूर्ण करता है। तब बाबा ने जो कल कहा ना ये अभी भी ख्याल में आता है कि कलयुग के अंतिम समय के अंदर भी हमारे जड़ चित्रों के आधार पर बने हुए चित्रों की भक्ति, उस भक्तों की सभी आशाएं अभी भी पूर्ण कर रही है। जो कल बाबा ने कहा ये हमने प्रैक्टिकल में 1974 में लिविंगस्टन के अंदर उस भाई साहब के घर में सुना और फिर उसने आरती किया तो हम पीछे बैठ करके देख रहे थे। तो उसने हमको कहा अरे रमेश भाई आप अपने लक्ष्मी नारायण की चित्र की आरती नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, आप भी गाओ। हमने कहा चलो ये भी गा लेते हैं, हम अपने ही चित्र की भक्ति कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। फिर उसने हमको कंकु भी दिया, सिंदूर दिया, वो लक्ष्मी नारायण के ऊपर लगाने करने के लिए कहा। तो इस प्रकार से अपने ही जड़ चित्रों के द्वारा कैसे अभी भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं जब अमेरिका में गया था अब 2-4 साल पहले, तो अपने अभी नई वहां पर ग्रेट नेक में नया सेंटर खुला हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वो पहले चर्च थी, वो चर्च थी पहले, और चर्च में क्राइस्ट का वो सब लगा हुआ था, हम लोगों ने उसको खरीद कर लिया और वो जो हॉल जो है ना, उस हॉल के अंदर श्री बाबा का चित्र लगा हुआ है और नीचे में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है। तो हम रविवार को वहां बैठे थे तो वो चर्च के अंदर जो पहले आने वाले थे ना, वो अभी भी आ रहे हैं। पहले वो चर्च में आते थे, अब हमारे सेंटर पर आते हैं, हमारा ज्ञान नहीं सुनते, परंतु वहां चर्च में आते हैं और चर्च के अंदर जो पहले वाले बेंचेस रखे हुए उसमें बैठ करके क्राइस्ट के बदले में अभी शिव बाबा की पूजा करते हैं, मनोकामना लक्ष्मी नारायण की करते हैं। तो मैंने, आप जानते हैं थोड़ा मैं वकील भी हूं तो हमारे वकीलों की बुद्धि थोड़ी टेढ़ी चलती है, तो मैंने उन भाइयों को, भाई बहन जो आए थे ना, उनसे पूछा आप यहां पर क्यों आते हो, ये तो क्राइस्ट का तो चित्र है नहीं ना, क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन का चित्र है। तो उसने कहा नहीं, आपका ये जो चित्र है ना, आपका ये शिव बाबा का चित्र है, आपके लक्ष्मी, ये बहुत पावरफुल है। हमारे क्राइस्ट से पहले क्राइस्ट की हम पूजा करते थे, यहां आते बैठते थे, याद करते थे, इतनी प्राप्ति नहीं होती थी। अभी तो ये आपके चित्र जो है शिव बाबा का और लक्ष्मी नारायण का, उनसे हम बैठते हैं ना और उनके सामने जो भी मांगते हैं वो हमको, हमारी मांग पूरी हो जाती है। ये हकीकत है, ये हमने अनुभव उनके मुख से सुना कि हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी भावनाएं, जो भी इच्छाएं, ये सब आपके ये चित्र जो है, शिव बाबा का चित्र है, लक्ष्मी का चित्र है, हमारी मांगे पूरी कर देता है। मैंने कहा देखिए हाँ बाबा, अभी भी कलयुग के अंत में भी हमारी जड़ यादगारों के द्वारा अभी भी लोगों की इच्छा पूर्ति कर रहा है। तो अब जब हम चेतन में होंगे तब हमारा ज्ञान क्या होगा, सोचो इसके ऊपर। और बाबा ने कल भी कह दिया कि आपके आप कितने जो महान आत्माएं जो भी है, धर्मात्माएं जो भी है, उनकी भी मंदिर नहीं बनता है और हमारा मंदिर बनता है। जब बाबा ने कहा ना हमारा मंदिर बनता है, तब मुझे ख्याल में आया, आज के ही अखबार में है, आज के ही अखबार में, कल के अखबार, आज के अहमदाबाद में महात्मा गांधी का स्टेच्यू बना करके रखा है, खुले में रखा है, और उसके अंदर जो है ना महात्मा गांधी के चश्मा जो है ना, वो चश्मे लगाए हुए हैं। मालूम नहीं कौन ऐसा एक चोर है, उसको महात्मा गांधी के चश्मे के साथ ही प्यार हो गया है। वो जितनी बार नया नया चश्मा लगाते हैं ना, वो पुराना वो चश्मा चोरी हो जाता है। स्टेच्यू ऐसा ही रहता है, स्टेच्यू की तो चोरी नहीं हो सकती है, परंतु महात्मा गांधी के चश्मे की चोरी हो जाती है। महात्मा गांधी के चित्र के ऊपर या स्टेच्यू के ऊपर छतरी भी नहीं है, इसलिए कौवे भी बैठते हैं, चूहा भी होता है, सब कुछ होता है और सब प्रकार की गंदगी होती है। और जब गांधी जयंती आने वाली होती है ना, उस दिन स्टेच्यू की सफाई होती है। बाकी ऐसा ही 12 मास जो है, 365 दिन जो है, 365 दिन में एक दिन कम, 364 दिन जो है ना, वो पशु पंखियों का, इन सब का आश्रय स्थान बन जाता है, न कोई उनकी पूजा करता है, न कुछ नहीं होता है, और हमारे जड़ चित्रों की मूर्तियों की अभी तक भी पूजा होती है। तो देखो जब ये बातें देखते हैं तब लगता है कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, और जब हमारा श्रेष्ठ भाग्य ऐसा भाग्य विधाता बना रहा है तो वो भाग्य विधाता कितना महान होगा, ये हकीकत है। बाबा ने फिर होली का अर्थ भी बताया, होली का अर्थ है जो बीत चुका सो बीत चुका। आज सबने जो पुरानी जीवन, तीन बातों के ऊपर, चार बातों के लिए बताया हुआ है, बीत कौन सी बातों को पुरानी करना, भूलना है, पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार और पुराने व्यर्थ संकल्प, चार पुरानी बातों को हमको छोड़ना है। पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराना संस्कार और पुराना व्यर्थ संकल्प, उसकी होली कर दो। और ये बहुत कठिन बात है, पुरानी बात को भूलना बहुत कठिन बात है। मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि ये भूतकाल की बातें जो है ना, भूतकाल की बातें अभी भी भूत बन करके हमको सताती है। वो भूत दुनिया वाले भूत ऐसा नहीं होता है, भूत डाकन पिशाच ये नहीं, पर हमारी भूतकाल की बातें जो है ना हमको भूत बन करके सताते हैं। हम अपनी भी पुरानी बातें नहीं भूल सकते हैं और औरों की भी पुरानी बातें नहीं भूल सकते, ये हकीकत है। पुरानी बातों को और पुरानी बातों के आधार पर औरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो होना चाहिए वो परिवर्तन में हमको लाना ही चाहिए। न हम अपने जब हम अपनी बातें पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं तो औरों की पुरानी बातों को हम क्यों याद रखें? वो भी अपनी पुरानी बातों से तंग हो गया होता, हम फिर उनको याद दिलाते हैं। इसलिए कृपया औरों की भी पुरानी बातें जो है ना उसको आप भूलो, औरों की जो गलतियां जो है उसको भूलो। फॉरगिव इस बताते हैं ना अंग्रेजी में, कहते टू फॉरगिव इस ग्रेट। हम पुरानी बातों को भूलना वो बहुत महान कर्तव्य है। पुरानी बातों के आधार पर औरों को जज करना हम भूल जावे तो अच्छा है। फिर बाबा ने मर्जीवा जन्म की बात कही है और इसलिए पिछले जन्म का संस्कार क्या है आपको मालूम है ना, 83वां जन्म और 84वां जन्म एक ही शरीर में होता है। 83वां जन्म और 84वां जन्म एक ही शरीर में होता है। जब मैंने ये कहा ना तो एक बहन ने कहा कि ऐसा होता है तो 84 जन्म कैसे होता है, 83वां जन्म अलग 84वां जन्म जो अलग है ऐसा ही होना चाहिए तब 84 जन्म पूरे होते हैं। मैंने कहा नहीं बहन ऐसा नहीं है, जन्मों की गिनती जो है ना वो हम लोगों ने बराबर नहीं सीखा है। आप हम सब जानते हैं बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देता है, बराबर 21 जन्मों का वर्षा देता है, वो तो मालूम है ना। वो कौन से 21 जन्म, मैं थोड़ी आपको जन्मों की गिनती बताऊं। 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, कितना हुआ 20 जन्म हुआ, तो 21वां जन्म कहां गया? सब गलत बोलते हैं, सब ने गलत कहा, क्योंकि 84वां जन्म जो है ना एक ही शरीर में होता है इसलिए हमारा जन्म नहीं आता है अलग। इसलिए 84वां जन्म जो है ना वो 84 अलग है, कारण 83 और 84 जन्म एक ही है। जो 21 जन्म जो है ना, जिन्होंने जगदीश भाई की किताब पढ़ी होंगी ना बराबर उनको मालूम होगा, जगदीश भाई ने बहुत बराबर इतिहास बताया है। सतयुग त्रेता में हमारा कितना जन्म होता है, गायन हो गया है 8 जन्म और 12 जन्म 20 जन्म। आप गिनती करो, एक जन्म के सतयुग में एवरेज जन्म है 150 वर्ष की, बराबर एक आयु, एक एवरेज आयु, तो 8 और 12 मतलब 150 जन्म से 1200 जन्म होता है, 1200 वर्ष होता है, 50 वर्ष वहां बच गए, बराबर है। और त्रेता युग में एवरेज आयु 100 वर्ष की, 12 जन्म तो 1200 वर्ष हुआ, तो 50 वर्ष यहां भी बच गए, 50 वर्ष सतयुग के और 50 वर्ष त्रेता के, तो वो 100 हुआ ना, तो इसके कारण वो एक जन्म एक्स्ट्रा होता है, वो 21वां जन्म है, न कि संगम युग का। संगम युग का जन्म हमारा 83वां और 84वां मिक्स है। इसलिए प्लीज ये कभी ऐसा नहीं मानना 84वां जन्म और वो एक जो 21 जन्म में एक जन्म जो है ना संगम युग का है वो गलत बात है। हिसाब करेंगे ना तो जगदीश भाई ने हिसाब करके लिखा हुआ है 21 जन्म सतयुग के ही है, सतयुग त्रेता के ही 21 जन्म है। फिर से बताता हूं, 8 जन्म सतयुग का 1200 वर्ष, 12 जन्म त्रेता का माना 1200 वर्ष, 1200 और 1200 24 वर्ष हुआ, 2500 वर्ष का सतयुग त्रेता युग है, 100 वर्ष बच जाता है वो, इसके कारण एक जन्म वहां पर एक्स्ट्रा होता है इसलिए 21 जन्म हो जाता है। और इसलिए बाबा कहते 21 जन्मों का राज्य भाग जो है आपको देता हूं। संगम युग के अंदर जो हमारा जन्म है वो 83वें जन्म में ही है, इसके कारण तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम है क्या, 84वें जन्म में हमारा पिता जो है वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है, आप डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा हमारे पिता है और मातेश्वरी हमारी मदर है, और उसके आधार पर हमारा ये दैवी परिवार है, इसके आधार पर हमारा ये दैवी परिवार है। और ये दैवी परिवार की परिभाषा जो डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा ने लिखा है, वो हमको बहुत मददगार बनती है। देखो बाबा की हर बात में पीछे रहस्य होता है। हमारे राजस्थान के अंदर, नहीं तो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, इस राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर हमें, नहीं तो यज्ञ को रजिस्टर कराना पड़े। यज्ञ माना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, परंतु तो सारी दुनिया के अंदर बाकी सब जगह पर अलग बातें हैं, परंतु तो राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक में ही एक नई बात है कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वही संस्था को रजिस्टर करनी पड़ेगी जो सरकार से ग्रांट लेती होंगी या सरकार से कोई ना कोई बेनिफिट लेती होंगी या पब्लिक से डोनेशन लेती होंगी। तो आप हम सब जो भंडारी में रखते हैं ना, तो उसके आधार पर हमारे पास चैरिटी कमिश्नर की नोटिस आई है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत, उसको देवस्थान कमेटी कहते हैं, और इन्होंने कहा आपको इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये कानून इतना खराब है कि अगर हम उसमें रजिस्टर्ड हो गए ना, तो हमारी संस्था के बाबा के विश्वविद्यालय की जितनी भी इनकम है उसका 2% वहां पर सरकार को देना पड़े, साल का आज के हिसाब से 70-80 लाख रुपया देना पड़े। तो हमने उनको लिखा, असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को, जो जिनका ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है, कि हम तो ये हमारे जो दैवी परिवार के भाई बहन है ना, वो एक दैवी परिवार के हैं। और ये दैवी परिवार कैसे बना कि ब्रह्मा बाप को पिता और मातेश्वरी सरस्वती को मदर मान करके आपस में हम भाई भाई हैं, और यहाँ तो एक पिता के बच्चों के हिसाब से भाई बहन है, ये दैवी परिवार है। और दैवी परिवार में जैसे आप अपने परिवार में, हाँ, घर में पति जो है कमाता है, घर में खर्च के लिए दिया पैसा, वो दान नहीं होता है। आप माँ बाप के रूप में आपने अपने बच्चे की स्कूल की फी दिया, तो क्या आपने अपने बच्चे को दान दिया? आप बताओ, आप अपने बच्चों को दान दिया, उनको रोटी खिलाई, घर का खर्च चलाया, दान नहीं किया? ये आपकी फैमिली के रूप में आपकी फर्ज अदाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कोई अपने परिवार के ऊपर उपकार नहीं किया है। तो उसी हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा ये डिवाइन फैमिली है बेस्ड ऑन ब्रह्मा बाबा एज स्पिरिचुअल फादर, अलौकिक फादर, और मातेश्वरी, और उसके आधार पर हम आपस में ये दैवी परिवार के सदस्य है, और उसी के आधार पर अपना परिवार चलाने के लिए यहाँ देते हैं। इट इज नॉट ए डोनेशन फ्रॉम पब्लिक, बिकॉज यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ पब्लिक, यू आर ए मेंबर ऑफ ए डिवाइन फैमिली। आप सब मानते हो ना, आप दैवी परिवार के सदस्य, ऐसा तो मानते हो? तो दैवी परिवार के सदस्यों ने उस परिवार को चलाने के लिए जो दिया, वो दान कैसे होगा? तो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने मान लिया कि बराबर है, आप पब्लिक से डोनेशन नहीं लेते हो, इसीलिए आप, आपका ये विश्वविद्यालय जो है राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड करने के लिए, आप उसके लिए आपको इसका बंधन नहीं है। और इसके कारण क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा की जो दृढ़ संकल्प था कि पांडव गवर्नमेंट कौरव गवर्नमेंट के आगे रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, वो आज भी 73 वर्ष हो गया है तो भी ये बात सबके, जो हम जो सब मानते थे, वो राजस्थान सरकार को भी माननी पड़ी है। और ड्रामा अनुसार देखो, आज तक हमारी ये बात सबको मालूम है, फिर भी राजस्थान सरकार कानून में परिवर्तन नहीं कर करके हमको उसके अंतर्गत खींचने का प्रयत्न भी नहीं करती है। तो देखिए बाबा की हर बात में कितना गुह्य राज भरा हुआ है दैवी परिवार के रूप में। ये डिवाइन फैमिली की कंसेप्ट दुनिया में और किधर भी नहीं है। आप सभी भी भक्ति मार्ग में थे ना, आप सबने भक्ति मार्ग में या लौकिक दुनिया में किधर भी डिवाइन फैमिली का इस प्रकार का कंसेप्ट किधर भी सुना? ये यहाँ हकीकत है, ये मूर्तिमंत है, और असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने हमारा ये दैवी परिवार के कंसेप्ट को लीगल कंसेप्ट मान करके हमें राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दिया। तो कितनी गुह्य ये डिवाइन फैमिली की डेफिनेशन है। तो इसलिए बाबा ने कल फिर से बताया, मतलब दबेलापन और कभी रॉयल आलस्य के बहुत भिन्न भिन्न रूप है, कभी इस पर क्लास कराना। हाँ, इसमें क्लास में क्या होगा वो भी बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। आलस्य कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आता है। बाबा हमको आलस्य के बारे में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं, हम सब तो एक्सपर्ट है। मैं आपको एक दूसरा मेरा अनुभव बताऊं। मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ एक बात में बहुत डिबेट होती थी। बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते थे, बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। तो मैं बाबा को हमेशा कहता था, बाबा ये पुरुषार्थ शब्द निकाल दो। जब हम बाबा के बन गए तो उसमें फिर नंबर वार क्यों रहता है, नंबर वार नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये नंबर वार तो रहेगा ही, बाबा अंत तक उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि सभी बच्चे नंबरवार ही है, कोई एक समान नहीं है। फिर बाबा ने जो है ना, एक अव्यक्त मुरली है, आप पुरानी मुरलियों का इतिहास देख लेना, उसमें एक अव्यक्त मुरली है बहानेबाजी, बहाने बनाना। वो मुरली जब बाबा ने चलाई तब उसमें कह दिया कि सभी बच्चे बहाने बनाने में पहला नंबर है। बाबा ने कह दिया उसमें कोई नंबरवार नहीं है। तो उस दिन वो मुरली के बाद जब बाबा से मैं मिलने के लिए गया तो बाबा ने कहा, आज तो बच्चा खुश होगा ना। मैंने कहा क्यों? कहा देखो, आज बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया, तुम्हारी इच्छा थी ना नंबर वार निकाल देना, आज तुम्हारी बात को बाबा ने मान लिया। हाँ, तुम साकार में बहुत डिबेट करता था बाबा के साथ कि नंबर वार शब्द निकाल दो, आज मैंने नंबर वार निकाल दिया। मैंने कहा बाबा इसके अंदर रखो सभी बच्चे, बाबा आपके सभी बच्चे नंबर वार हाँ बहानेबाजी में है। बाबा ने कहा नहीं, इसमें तो सभी का पहला नंबर है। बाबा की बात बराबर है, किसी का सेकंड नंबर है, सबका पहला नंबर है। वो पढ़ना, बहुत रमणीक मुरली है बहानेबाजी की, कैसे कैसे बच्चे बहाने बनाते हैं। हाँ, वो हमें भी मालूम नहीं पड़ता ऐसे बहाने बच्चे बनाते होंगे। हाँ, आज की मुरली में भी कैसे कैसे हम बहाने बनाते, वो बाबा ने थोड़ा सैंपल दिखाया हुआ है। फिर बाबा ने वो लेना भी दिया हुआ है कि रावण के संस्कार को मेरा कहते हो, कमाल है। रावण को दुश्मन कहा जाता है और दुश्मन को खजाना अपना बनाना यह आश्चर्य की बात है। बाबा को भी आश्चर्य लगता है, कई बच्चे बाबा से बात भी करते हैं, माफी भी लेते हैं कि बाबा कल से नहीं करूंगी या करूंगा, और फिर कर देते हैं। तो बाबा क्या करे, बाबा देखता रहता है, लाचार है। कई बातों में हम बाबा को लाचार बना देते, बाबा कहते मैं देखता रहता हूं मैं क्या करूं, आप वायदा तो करते हो परंतु फिर भी तोड़ देते हो। फिर बाबा ने कोकी की बात बताई, और आज जानकी दादी ने भी बताया, जानकी दादी ने भी प्रयोग किया था कि कोकी जल गई धागा रह जाता है, ये हकीकत है। तो इस प्रकार से होली के बारे में भी बताया, मतलब बाबा ने कहा आपने यह त्यौहार जो शास्त्र बनाने वाले हैं वो भी बाप के बच्चे ही है, लेकिन बाप दादा देखते हैं उन्हों की कमाल कम नहीं है। आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। हर त्यौहार का आप देखो कितना सुंदर यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको भी स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है। इसलिए बाबा ने कहा है, देखो कितना बाबा रहम दिल है कि बाप दादा यह सामग्री, ये त्यौहार और शास्त्र बनाने वाले को भी उनका फल देते हैं। भक्ति में भी कुछ तो याद करते हैं और विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते हैं। फिर बाबा ने बाबा का रंग सदाई रहे उसके लिए युक्ति एक बताई है, और एक सीट दिया है, बैठने की जगह दिया है। उस सीट पर बैठ जाओ तो कभी भी गलती नहीं होगी, और बाबा ने उस सीट का नाम दिया है त्रिकालदर्शी बनना, है ना। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी के सीट पर बैठ जाओ, तीनों कालों को देखो, तीनों कालों में फायदा है या नुकसान है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ, क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना नहीं था इसलिए काम चला लिया, बाकी मैं समझती थी कि नहीं होना चाहिए लेकिन कर लिया। फिर तो बाबा ने इसलिए कह दिया, अगर कर लिया तो फिर क्या होगा, उस कर्म का फल तो मिलेगा ही, इसलिए कभी भी बाप से चतुराई नहीं करना। कई बच्चे बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाबा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने कल कहा कि एक बात पक्का कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो, और दूसरा बाबा ने डायरेक्शन दिया, अभी बाप से चतुराई नहीं करो परंतु हिम्मत रखो, हाँ करना ही है, गेंगे गेंगे नहीं करो। और फिर बाबा की वो सावधानी आती है, वो मैंने पहले ही बता दिया। फिर एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी की बाबा ने कल बातें बताई, मम्मा की, बाबा बड़ी दीदी की और दादी प्रकाशमणि की, तीनों की बातें बाबा ने बताई है पीछे में। हाँ, दादी ने बताया कर्मातीत बनना ही है, कर्मातीत होना ही है। मम्मा ने कहा कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी ने जो कहा कि अब घर चलना है, अब घर चलना है, यह आवाज कानों में गूंजना चाहिए, बार बार कानों में ये आना चाहिए, तो धुन लगा दो, कर्मातीत तो होना है और अब घर चलना है। यह बोल बार बार श्रुति में लाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का, होली बच्चों को होली की मुबारक, और साथ में सभी बाप दादा के पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख खोलो। हमारी ये कितनी खूबी है, आपको मालूम है क्या हुआ स्टेज पर, बाबा ने तो कल बना गेवर का, गेवर बना नहीं था क्योंकि होली का भोग तो कल लगने वाला है। बाबा ने जैसे ये कहा ना, हमारे टोली डिपार्टमेंट का आत्म प्रकाश भाई है ना, आत्म प्रकाश भाई ने फटाफट गेवर बना दिया। गेवर जाल जानते हो कैसा होता है, इतना गोल गोल मतलब होता है, हमारे वहां हमारे गांव में तो बड़े इतने बड़े बड़े गेवर होते हैं, फाफड़ा भी होता है, सब दोनों होते हैं, गेवर और फाफड़ा जो है चना बेसन के बनता है, और ये गेवर जो है वो मीठी चीज होती है। तो हमारे आत्म प्रकाश भाई ने कल बाबा ने ये मुरली में कहा, और बाबा को जब भोग स्वीकार करा रहे थे तो उस टाइम पर आत्म प्रकाश भाई टोली डिपार्टमेंट मतलब गेवर बना करके लेके आए और बाबा के सामने प्रस्तुत किया। कितना फास्ट एक्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार ऐसा ही हुआ, हम दादी प्रकाशमणि ऊपर उधर क्लास करा रही थी अपना मेडिटेशन हॉल में, और दादी ने कहा कि आज मेरी दिल है कि सभी बच्चों को गुलाब जामुन खिलाओ, ऐसा मुरली के बीच में बोल दिया। और जैसे मुरली पूरी हुई ना, आत्म प्रकाश भाई मुरली के पश्चात इतना बड़ा थाल गुलाब जामुन लेकर के आए और कहा, दादी आपने मुरली के बीच में कहा ना आज मेरी इच्छा है मुरली सबको गुलाब जामुन खिलाना, देखो मैं बना करके लेके आए। हमारा एक कितना डिपार्टमेंट त्वरित गति से काम करता है, फटाफट बना करके लेके आए उस दिन, मतलब वहां पर ऊपर में पांडव भवन में सबको गुलाब जामुन दादी ने खिलाया, और यहाँ पर कल बाबा ने गेवर खाया, और जो भी है वहां स्टेज पर बैठे हुए थे थोड़े थोड़े उसको सबको चखा चुकी कराई। फिर भी बाबा ने कहा कि गेवर तो बाबा ने बोले ना दे दिया कि आप कल भोग में भी गेवर तो ऊपर आया नहीं था, तो बाबा ने गेवर इमर्ज करके सभी को खिला दिया, ऐसा कल बाबा ने बता दिया। तो वो अभी कल भोग लगेगा तो उसमें आप सबको ये मिलेगा, गेवर क्या है मीठी चीज होती है बहुत अच्छी होती है। तो बाबा ने कहा सभी मुख खोलो और गेवर खाओ, खाया तो सभी को बहुत बहुत पद्म गुणा बाप दादा और एडवांस पार्टी के सभी बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते, ऐसा कह करके बाबा ने 9:30 पर पूरा किया। फिर बाबा यूपी और पश्चिम बनारस और पश्चिम नेपाल के भाई बहनों से मिले हुए हैं, तो बाबा ने कानपुर के इन सब बहनों को, भाइयों को, पुराने भाई बहनों को याद किया। आज सुबह भी दादी जी ने याद किया, योग का गीत बज रहा है, हम 3 मिनट बाबा की याद करेंगे। कल फिर बाबा जो दो विंग वाले जो थे स्पार्क और साइंस, गिविंग वाले उनसे भी बात किया है और इन्होंने भी अपने जो भी बातें सब पहले से लिख करके बाबा को भेजी थी, इसलिए बाबा ने क्या वो समाचार मिले हैं। और फिर बाबा ने जो कहा उनको सबको, हम सबको जो कहा, भाषण नहीं करना है, अभी अनुभव कराओ। सेवा का स्वरूप जो है ना, 5 तारीख की अव्यक्त मुरली जो है, इस 5 फरवरी की, तब से बाबा ने सेवा का स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है। पहले संदेश देने की सेवा थी, मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, अब संदेश के बदले में अनुभव कराओ। बाबा ने कल भी कहा भाषण में ही करो, अनुभव कराओ, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस है। तो ये संदेश देने की सेवा और एक्सपीरियंस ओरिएंटेड गॉडली सर्विस में क्या फर्क है, ये बहुत गुह्य बातें हैं। इसको समझने के लिए 1 घंटा इसके ऊपर क्लास कराना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव वाला व्यक्ति कभी भी रह नहीं सकता है, अनुभव वाला किसी भी बहकावे में नहीं आ सकता है और समस्या में घबरा नहीं जा सकता है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन से ज्यादा अनुभव कराओ। बाबा को हमेशा हम बच्चे आपस में मिलते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर विदेशियों को, विदेशियों में भी युगल वाले जो है ना, उनको बाबा ने कहा है ये युगलों की, सभी युगलों के ऊपर बाबा ने जिम्मेदारी रखी हुई है कि महामंडलेश्वरों आदि को चरणों में झुकाओ। आप पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़ करके जाते हो और हम लोग पवित्र घर गृहस्थ में रहते हो कैसे रहते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा उनको ढीला करो तो फिर वो हमारी बात को मानेंगे। फिर विदेश की टीचर्स बहनों के साथ भी बात किया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, बातें जो है समान, बाबा ने कहा है सबको समान दो, रिस्पेक्ट दो, इस प्रकार से बातें कही हुई है। और फिर बाबा ने जो याद दिलाया कि बाबा नाम लेते हैं नहीं लेते हैं, कभी समय आएगा वो नाम भी ले लेंगे। फिर दादियों से बात किया है, निर्मल शांता दादी से, कल दादी निर्मल शांता का बर्थडे था तो बाबा ने उनको गले में माला भी पहनाई। शांतामणि दादी से फिर हमसे भी बात किया, फिर VIP ग्रुप से बात किया है, कनुप्रिया बहन जो आस्था चैनल वाली है उनसे भी बात किया है। इस प्रकार से बाबा ने कल हम मुरली चलाई है होली के रूप में, रमणीकता के साथ साथ ज्ञान भी बहुत अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार से ये कल की मुरली है, उसके अंदर बाबा ने जो एक जो बात कही है फरिश्ता स्वरूप धारण करने की, और फरिश्ता स्वरूप धारण करो क्या है, 5 तारीख की अव्यक्त मुरली है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया ना बाबा ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। अब तक हम मानते थे ब्राह्मण सो देवता, 5 तारीख की मुरली में बाबा ने पहले कहा 3 स्वरूप, हम बच्चे जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, बीच में एक स्टेज देवता से पहले और ब्राह्मण के बाद वो फरिश्ता रूप की डाली है बात, और उसके ही अंदर ऑपरेटिव पार्ट में कहा है बाबा ने कि अभी फरिश्ता स्वरूप की सेवा में धुन लगाओ, फरिश्ता स्वरूप की सेवा में धुन लगाओ। कल भी बाबा ने वो फरिश्ता स्वरूप का कपड़ा पहनने के 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट इस प्रकार से वो फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस पहनना, माना अपने आप को फरिश्ता रूप में स्थित करो। इस बात के ऊपर हम भाई बहनों का ध्यान नहीं गया हुआ है, और तो बाबा ने जो कल भी कहा मनसा सेवा की बात कही, ऊपर दादियां आदि जो भी आती है मनसा सेवा करती, मन और बुद्धि की सेवा करती है, ये फरिश्ता रूप में भी यही बात आती है कि आप बच्चे फरिश्ते बन करके करो। जो उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा हुआ है 5 तारीख की जो है मुरली, मैं समझता हूँ सबको 4-4 बार पढ़नी चाहिए। इसमें बाबा ने कहा हुआ है कि फरिश्ते रूप के द्वारा क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, फरिश्ते के रूप के द्वारा बाबा ने कहा जो आदि में कईयों को ब्रह्मा बाबा ने कहा उसमें कि ब्रह्मा के बाप के अंदर परमात्मा ने प्रवेश किया उसका साक्षात्कार बहुतों के होता था, वो बाप का बाप की शक्ति का साक्षात्कार होता था। अगर हम फरिश्ते स्वरूप को धारण कर ले, जो कल भी बाबा ने कहा होली के अंदर फरिश्ते रूप को ऊपर भी बताया, सब दादियों का फरिश्ते रूप अगर वो धारण कर दे तो जो परमात्मा की शक्ति का अनुभव साक्षात्कार सबको होता था ना, वही साक्षात्कार हम आत्माओं के द्वारा सबको हो सकता है। हम सबका एक अंतवाहक शरीर है जिस शरीर के द्वारा हम ये फरिश्ते रूप को धारण कर करके अंतवाहक शरीर के द्वारा कार्य कर सकते हैं। साक्षात्कार की सेवाएं और साक्षात्कार के द्वारा जो सेवाएं अंतम समय में होने वाली है, ये जिन्होंने ये फरिश्ता रूप धारण करने का अभ्यास किया हुआ होगा और उस स्वरूप के ऊपर मास्टरी प्राप्त की हुई होंगी, वो अंतिम समय की सेवाओं में परफेक्टली काम कर सकेंगे। हम तीन भाइयों को भी बाबा ने पिछली सीजन में कहा था, मैंने ही बाबा को संदेश भेजा था, बाबा आपका ईश्वरीय सेवा का कारोबार इतना बढ़ गया है कि 24 घंटा भी हमको कम पड़ता है। तो बाबा ने हम तीन भाइयों को खड़ा करके कहा कि आप कहते हो अभी 24 घंटा कम पड़ता है कि अभी तो कुछ सेवा नहीं हुई है। क्या बाबा ने कहा? अभी तो कुछ सेवा नहीं हुई, अंतिम समय में जो सेवाएं होने वाली है ना, इसकी तो आप बच्चों को कल्पना भी नहीं है, और आप इतनी थोड़ी सी सेवा है उसमें कह दे तो बाबा 24 घंटा कम पड़ता है, तो अंतिम समय की जो सेवाएं जो है उसको आप कैसे कर सकेंगे? और उसी टाइम पर सच्ची सेवा होने वाली है और अंतिम समय में ही सबका रिजल्ट निकलने वाला है, सब कुछ एक साथ में अंतिम समय पर होगा, और इसलिए उस अंतिम समय की सेवाओं के लिए अब से पुरुषार्थ करके उसके लिए लायक बनो। उस अंतिम समय करना चाहिए, उसके बारे में पुरुषार्थ करो, क्या मेहनत करो और अपना फरिश्ता स्वरूप के द्वारा उसकी धुन लगाओ। बाबा ने 5 तारीख मुरली में साफ कहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अभी सेवा के अंदर फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सेवा करने की धुन लगाओ, क्योंकि यही धुन यही अंतिम समय के अंदर हमारा फरिश्ता स्वरूप हमारा अंतिम शरीर को जो भी कहो अंतवाहक शरीर जो भी कहो इसके द्वारा हम सेवा कर सकेंगे। यही अंतिम समय की सेवा है, यही मनसा की सेवा है, इसी कारोबार को हमको धारण करना है। बाबा यही कह देंगे जो इसको धारण करेंगे जो इस सेवा के लिए अपने आप को लायक बनाएंगे उनके ही द्वारा अंतिम समय की सेवाएं होंगी। इसलिए बाबा तो हम बच्चों को बता देते हैं फरिश्ता रूप का, और इसलिए बाबा ने कहा भी है सारे दिन में 3 बार 4 बार 5 बार कल भी बाबा ने कहा इस फरिश्ता रूप को धारण करो। सभी हदों की बातों से ऊपर चले जाओ, फरिश्ता स्वरूप अपना वो दिव्य स्वरूप जो है अंतवाहक शरीर जो भी उसके द्वारा सेवा करने के लिए लायक बनकर के पुरुषार्थ करो। तो ये अंतिम समय की जो सेवाएं जो है ना, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और इसलिए वो अंतिम समय बाबा भी मुरली में कहते हैं। कल भी हमारे पास आर्टिकल एक आया हुआ है जाना अपना ईमेल में कि अभी अंतिम समय कैसे चल रहा है उसके हम 7 कारण बता रहे हैं। लौकिक दुनिया वाले भी लिख रहे हैं कि अभी अंतिम समय विश्व परिवर्तन का चल रहा है, तो दुनिया वाले भी इसको मान रहे हैं, तो हमें तो बाबा का ज्ञान मिला ही हुआ है, हम भी जानते हैं अंतिम समय चल रहा है तो उसकी सेवा के लिए क्या करना चाहिए वो विधि सीखनी पड़ेगी। जो उस विधि को सीखेंगे ना और उसके मास्टर बन जाएंगे एक्सपर्ट बन जाएंगे वो अंतिम समय में अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे। इसलिए कल की मुरली का जो सार जो है ना जो आपने को बताया ही है कि होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस जो हमारे राजू भाई ने मुरली का टाइटल में लिखा है होली की विशेष सौगात फरिश्ता ड्रेस रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली करना। तो ये फरिश्ता ड्रेस जो है उसको रोज बीच बीच में धारण करो, रोज 3-4 बार धारण करो और अपने आप को हाँ, फरिश्ते रूप के सेवा के लिए लायक बनाओ, तो क्या हो जाएगा, कल की मुरली जो सुना है ना वो सार्थक होगा। ओम शांति।